Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, Brahmananda Valli, presented by Swami Sri Vishwatmanandaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Narayana 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 Narayana. तैत्रीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली का प्रसंग चल रहा है। इसका प्रतिज्ञा वाक्य है ब्रह्मविद आपनोति परम। ब्रह्मवेत्ता उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान के अलावा उस ब्रह्म ज्ञान को, उस ब्रह्म को, ब्रह्मानंद को प्राप्त करने का दूसरा कोई साधन नहीं है। वो ब्रह्म कैसा है तो उसका लक्षण किया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो ब्रह्म सत्य है, ज्ञान रूप है और अनंत है। तो कल आपको ये बताया था कि अनंत का अन्वय सत्य के साथ भी करना होता है और ज्ञान के साथ भी करना होता है। ब्रह्म का एक लक्षण है अनंत सत्य, दूसरा है अनंत ज्ञान और तीसरा है स्वयं अनंत। जो अनंत और है, अनंत है और है और उसी को अनंत सत बोलते हैं। और जो अनंत है और ज्ञान स्वरूप है उसी को ज्ञानम बोलते हैं, यप्तिर ज्ञानम। और जो देश काल वस्तु किसी से नहीं कटता, सबसे अनंत है, उसको अनंत बोलते हैं। अब कहते हैं कि इसकी एक यहां श्लोक उन्होंने दिया है सुरेश्वराचार्य जी महाराज ने, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं एवं ज्ञातम विजानाति विमुक्तश्च विमुच्यते निवर्तते निवृतिम च त्रिर्वह शपथयाम्यहम्। मैं तीन बार शपथ खा करके आप लोगों से ये बात कहता हूं। क्या? कि एवं ज्ञातम विजानाति, इसी प्रकार से जो पहले से ही ज्ञात है उसी को दोबारा ज्ञात होना होता है। क्या आपको अपना स्वरूप ज्ञात नहीं है? मैं मनुष्य हूं कि मैं पशु हूं वो बात अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ रूप में तो आप अपने को जानते ही है ना। उपनिषद तो आपको ये बताता है कि आप जिस रूप में आप अपने को जानते हो वो आप नहीं हो, जो हम तुमको बताते हैं वो तुम हो। तो एवं ज्ञातम विजानाति, ज्ञात तो है आत्मा लेकिन गलत ढंग से ज्ञात है, उसी को उपनिषद फिर सच्चे रूप से बताती है। तो ज्ञात की ही ज्ञातता उत्पन्न होती है, यह अभिप्राय है। और विमुक्तश्च विमुच्यते, महाराज मुझे तो मुक्ति चाहिए। अरे बोले तुम मुक्त ही हो। एक चींटी भी जो है ना, उसको अगर कोई पकड़ना चाहे तो वो भी भागती है, वो भी अपने को बंधन में नहीं रखना चाहती है। और हम लोग जो बंधन में पड़े हुए हैं वो जानबूझ करके बंधन में पड़े हुए हैं, किसी ने हमको बांध नहीं रखा है। हमको तो ऐसे ही करना है, ऐसे ही रहना है, ऐसे ही सोचना है, बस। तो ऐसे ही जहां किया सोई बंध गए ना। अब बोले अब इतने बरस से ऐसा कर रहे हैं, इतने बरस से ऐसा रह रहे हैं, अब कैसे छोड़ दें? अब यही तो बंधन है और क्या बंधन है। अपने आप ही तो बंधे, अब अपने आप ही उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। विचार भी ऐसे जड़बद्ध हो जाते हैं कि उनको भी छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं रहते। उतने इतने वर्ष से हम अपने को जीव मान रहे हैं, तो अब हम अपने को ब्रह्म कैसे मान रहे हैं? तो विमुक्तश्च विमुच्यते। मैं शपथ खा के ये बात कहता हूं कि जो मुक्त ही, जिसका स्वरूप ही मुक्त है, उसी में मैं मुक्त हूं ये ज्ञान उदय होता है, वो दोबारा मुक्त होता है। मुक्त तो पहले से ही है। और निवर्तते निवृत्तिम च, बोले मेरा संसार छुड़ा दो। तो संसार ने पकड़ कब रखा है तुमको जो छुड़ा दें? तुमने संसार को पकड़ रखा है, तुम छोड़ना नहीं चाहते। बोले छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छूटता नहीं है। बोले छूटने की, छोड़ने की हिम्मत नहीं है। तो महात्मा ने पेड़ को पकड़ लिया और जिज्ञासु से कहा कि अरे भैया मुझे छुड़ाओ, देखो इस पेड़ ने मुझे पकड़ रखा। तो जिज्ञासु ने कहा महाराज, पेड़ आपको कैसे पकड़ लेगा? पेड़ जड़ है, आप चेतन हो, मेरे सामने ही आपने इस पेड़ को पकड़ा है, छोड़ दो आप। तो बोले तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, तू जो कहता है कि छूटता नहीं, छूटता नहीं, तो पकड़ा हुआ तो तय नहीं है। निवृत्त की ही निवृत्ति होती है। जब बच्चा पैदा होता है तब वो कुछ भी नहीं पकड़े होता है और धीरे 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 करके सब कुछ पकड़ लेता है। निवर्तते निवृत्तिम च, त्रिर्वह शपथ है आम्य हम, मैं तीन बार तुमसे शपथ खा के ये बात कहता हूं कि सच्चाई यही है। और एक महात्मा के पास एक सज्जन को वैराग्य हुआ तो पहुंच गए महात्मा के पास। बोले महाराज हमको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराओ और संसार हमारा छोड़ाओ। तो महात्मा तो अपनी मस्ती में बैठे थे, तो उन्होंने कहा भाई हमारे यहां तो प्राप्त की प्राप्ति है और नित्य निवृत्त की निवृत्ति है। जो पहले से ही प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है, जो पहले से ही छूटा हुआ है उसको छोड़ना है। अब वो बेचारा घर से नया नया आया था, उसे सत्संग का तो अभ्यास था नहीं, तो वो कुछ समझ में ही नहीं आया उसके क्या कह रहे हैं महात्मा। बोले महाराज मेरी तो समझ में आया नहीं। तो बोले भाई मेरा तो यही ज्ञान है, तुम किसी दूसरे महात्मा से पूछ लो। अब उसी मोहल्ले में किसी दूसरे आश्रम में घुस गया। अब उसे तो मालूम नहीं था वो दूसरा वाला जो था वो पहले वाले का चेला था। तो उसने पूछा कि कहीं और भी गए थे क्या? बोले वो एक नंबर की कुटिया में गया था। बोले ठीक। बोले क्या बताया उन्होंने? बोले जाने क्या कह रहे थे, मेरी तो कुछ समझ में आया नहीं। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति, ऐसा कुछ बोल रहे। महात्मा ने कहा कि हमारे यहां तो भाई ऐसा नियम है कि पहले एक बरस सेवा करो आश्रम में रह करके, तब हम ज्ञान देंगे तुमको। बोले ठीक है महाराज, एक बरस तो निकल जाएगा ऐसे ही। सेवा बता दी महात्मा ने। अब बड़ी अच्छी सेवा की तो महात्मा जी भी तारीफ करने लगे और लोग भी, आश्रम के लोग भी तारीफ करने लगे। ये मुमुक्षु को सबसे कड़ी चीज जो बांधने वाली है ना, वो प्रशंसा है। जब उसे प्रशंसा मिलने लगे, आप बहुत अच्छा बोलते हो, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, तो समझ लो आप फंसने जा रहे हो। सावधान। अब उनकी सेवा की तारीफ होने लगे तो उनके मन में भी आ गई कि सेवा करना बहुत अच्छा है। फिर भी उन्होंने महात्मा से पूछा कि महाराज कुछ उपदेश करो, साल भर तो बीत गया। बोले भाई हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, अब तुम हमारे कोठारी बन जाओ। और कोठारी का मतलब मैनेजर होता है, समझो। विरक्त लोगों में मैनेजर कोई कोठारी बोलते हैं, वो सब मालिक वही होता है। तो बोले धीरे धीरे हम उपदेश कर देंगे, निश्चिंत रहो। अब वो कोठारी बन गए नारायण। अब सेवक तो अच्छे थे ही, बड़ा अच्छा काम संभाला उन्होंने, और ज्यादा प्रशंसा हुई। और किसी पद पर पहुंच जाओ तो चरण और छूने लगते हैं लोग, तो चरण भी छूने लगे। अब तो वो समझने लगे कि हम भी महात्मा हो ही गए। हमारे आश्रम में एक गौशाला में काम करने वाला है लड़का, अब महंत जी ने उसे जैसे मेट होते हैं ऐसे उनका गौशाला वाले लोगों का मेट बना दिया। अब वो कपड़े जो है वो महात्मा के पहनता है, जबकि काम तो उसका गौशाला में काम करने का है। तो वो वैसा फिजिकल वर्क नहीं करता है, बस देख रेख करता। अब लोग उसके पैर छूने लगे। अब वो कहता है देखो मैं महात्मा लगता हूं कि नहीं नारायण। तो लोग चढ़ा देते हैं, अरे तुम तो महंत से भी ज्यादा अच्छे लगते। अब वो कोठारी जी जो है वो चढ़ गए, 12 बरस बीत गए नारायण। अब वो समझ में ध्यान ही नहीं रहा कि मैं क्यों आया था घर से। एकाएक ध्यान आया तो फिर महात्मा जी के पास पहुंचे। महाराज अब तो बहुत समय हो गया, अब आप उपदेश करो। तो बोले उपदेश तो करते हैं, अच्छा बैठो, क्या चाहिए तुम्हें? बोले ब्रह्म ज्ञान चाहिए। अब इतने दिन उसने सुना तो था ही, उसको भी थोड़ा बहुत तो संस्कार पड़ ही गया था। बोले भाई ब्रह्म किसको कहते हैं? बोले जो सत हो, चित हो, आनंद हो, सर्वव्यापक हो, सबका आत्मा हो। बोले फिर तो वो नित्य प्राप्त है। बोले हां प्राप्त तो है। तो ब्रह्म ज्ञान माने नित्य प्राप्ति की प्राप्ति। और बोले अब ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, इसमें बैठ करके देखो संसार कहीं तुम्हें दिखाई देता है? बोले संसार तो नहीं दिखाई देता। तो बोले वो तो छूटा ही हुआ है फिर तो। जिसको तुम छोड़ना चाहते हो वो तो नित्य निवृत्त है, और जिसको पकड़ना चाहते हो वो नित्य प्राप्त है। तो नित्य प्राप्त की प्राप्ति और नित्य निवृत्त की निवृत्ति, ये इतना ही वेदांत है। बोले महाराज समझ में तो आ गई, मगर ये बात बताओ कि ये बात तो एक नंबर की कुटिया वाले ने मुझे पहले ही दिन बताई थी, आपने मेरे 12 बरस जो ये खराब कर दिए। तो बोले तुझे मालूम नहीं है, वो मेरे गुरुजी हैं। अब मैं गुरुजी की बात को यहां से कैसे काट देता? तो तेरे में संस्कार नहीं था इसलिए तुझे ठीक नहीं बात लगी, अब तू भी समझता है तो तू भी ठीक ही कह रहा है। तो सुरेश्वर आचार्य जी महाराज कहते हैं कि नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होती है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति होती है, और जो नित्य मुक्त है उसी की दोबारा मुक्ति होती है। मामला तो सब रेडीमेड है, सिर्फ हमारे पास कैश, टर्म्स कैश, उधार माल नहीं चलता है। अब प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं कि ब्रह्म तो नारायण सत भी हो गया, चित भी हो गया, अनंत भी हो गया, और अर्थापत्ति प्रमाण से आनंद भी हो गया। क्योंकि जो अनंत होता है उसी को भूमा बोलते हैं, और छांदोग्य उपनिषद में भूमा को ही आनंद बताया है। यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखमस्ती, जो भूमा है वही सुख स्वरूप है, और जो अल्प है माने परिच्छिन्न है, अनंत नहीं है, उसमें तो सुख है ही नहीं। तो अब शिष्य ने कहा महाराज ये तो ठीक है, ये तो प्रतिज्ञा वाक्य हो गए, अब इनकी आप सिद्धि कीजिए। भाष्य में भी ऐसा ही लिखा है और वार्तिक में भी ऐसा ही लिखा है कि ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो ब्रह्म का लक्षण किया, इसकी सिद्धि के लिए ब्रह्म को जगत का कारण बताया जा रहा है। जगत का कारण ब्रह्म है इस बात को सिद्ध करने के लिए नहीं श्रुति बोल रही है। अगर कारणता सच्ची हो तो फिर मुक्ति सच्ची नित्य मुक्ति की मुक्ति होती है, यह सिद्धांत कट जाएगा। क्योंकि कारण यदि सच्चा है तो हम तो बंधे हुए हैं। ये शरीर क्यों आया? बोले पुराने जन्मों के संस्कारों से। बोले सच्चे थे कि झूठे थे? कि सच्चे थे तो हमारा बंधन भी सच्चा है ना। इसलिए जो जीव अपने को मानते हैं वो वेदांत की इस बात को स्वीकार नहीं करते कि केवल अविद्या से बंधन है। महाराष्ट्री ने तो अपने प्रवचनों में इस बात पर जोर दिया है कि वेदांत की जो मौलिकता है वो कर्म से बंधन होता है, ये मौलिकता नहीं है, ये तो पूर्व मीमांसा का पक्ष है। अविद्या से बंधन है ये वेदांत का पक्ष है। अगर बंधन अविद्या से न हो तो ज्ञान से निवृत्त नहीं हो सकता। और सारी श्रुतियां जो हैं इसी बात को बता रही हैं कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है। इसका अर्थ है कि बंधन जो है वो अज्ञान से ही सिद्ध है। आप अज्ञान से कर्म को कारण मान लो, ये तो हो सकता है, लेकिन वो मूल बात इतनी है कि अज्ञान उसके भीतर बैठा होगा, वास्तविकता को आप समझते नहीं है। तो अब ये अध्यारोप श्रुति करती है कारणता का। देखो संसार में, संसार को हम सच्चा क्यों मानते हैं? क्योंकि आंखों से दिखाई पड़ता है, हाथ से छू लेते हैं, प्रत्येक इंद्रिय का विषय हो रहा है, इसलिए हम संसार को सत्य मानते हैं। तो माने प्रत्यक्ष प्रमाण से संसार को सत्य मानते हैं। अब आत्मा को या परमात्मा ब्रह्म को सत्य कैसे माने? वो तो दिखता नहीं है, उसको छू नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, तो उसको हम सत्य कैसे मान लें? तो बोले जिसको तुम्हें सत्य मानने का अभ्यास है ना, धरती को सत्य मानते हो, जल को सत्य मानते हो, अग्नि को सत्य मानते हो, वायु को सत्य मानते हो, इस पोलम पोल आकाश को सत्य मानते हो, जिन जिन चीजों में आपको सत्यत्व का अभ्यास है, अगर ये मालूम पड़ जाए कि इन सब के उपादान कारण माने इन सब का जो मैटर है, मटेरियल है जिससे ये चीजें बनी हुई है, वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म सबसे पहले सत्य सिद्ध हो जाएगा कि नहीं? तो ब्रह्म ये अभिन्न निमित्तोपादान कारण जो बताया जाता है ब्रह्म को, वो जगत में जो सत्यत्व बुद्धि है उसको ब्रह्म में आरोपित करने के लिए ब्रह्म को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं। निमित्त कारण तो चैतन्य ही हो सकता है, जड़ नहीं हो सकता है। इसलिए सत्यम ज्ञानम में जो ज्ञानम है वो तो सत्य सिद्ध हो ही जाएगा। और इनका पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनका उपादान, इनकी मिट्टी, ये जिन चीजों से बने हुए हैं, यदि वो ब्रह्म निकल आवे तो अगर ये सत्य है तो ब्रह्म पहले सत्य है नारायण। अच्छा, ये अनंत है कि नहीं है? धरती इत्यादि जो है ये अनंत है कि नहीं है? तो पृथ्वी को तो कोई अनंत नहीं मानता है, और आजकल की वैज्ञानिक दृष्टि तो थोड़ी बहुत बढ़ गई है ना, तो जल को भी सीमा मानते हैं कि बस इतनी ऊंचाई के बाद जल नहीं है, इतनी ऊंचाई के बाद वायु नहीं है। लेकिन आकाश कहां नहीं है? तो बोले आकाश तो सर्वत्र है। तो आकाश में अनंतत्व बुद्धि हमारी सहज रूप से है, और बाकी पंचभूतों में सत्यत्व बुद्धि हमारी सहज रूप से है। तो अब सबसे पहले ब्रह्म को ही इन आकाश आदि पंचभूतों का कारण स्थापित करते हैं, जिससे ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है, ये बात अनुभव में आ जाए। तो इसके आगे की जो श्रुति है वो ये है, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशा संभूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्याम् पृथ्वी पृथिव्या ओषधया ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः। इतना ही रखो। बोले तस्मात्, तस्मात् माने उससे, कारणात् किससे, तो बोले ब्रह्मविद आपनोति परम। वो ब्रह्मवेत्ता जिस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है उस ब्रह्म से वा, वा माने है अथवा नहीं है, निश्चय ही, निश्चय ही उस ब्रह्म से एतस्माद, वही जो ये ब्रह्म है वो माने ऐसे ऊपर को करके बोलो तो वो हो गया। अब किसी से भी बोलो परमात्मा कहाँ है तो सबकी उंगली ऊपर ही उठती है ना, अभ्यास पड़ गया। बोले ये तस्मात, अरे इससे भी, ब्रह्मज्ञानी कहता है उससे मानो और चाहे इससे मानो, ये क्या है, आत्मा। देखो ये शब्दों की महिमा है। मान लो मैं आत्मा शब्द बोलूं तो आपका बुद्धि तुरंत अपने शरीर के भीतर चली जाती है। देखो तुम आत्मा हो तो माने शरीर के भीतर कोई चीज है जिसका नाम आत्मा है, जिसको आत्मा बताया जा रहा है, यही तो ज्ञान होगा, इससे और क्या होगा। और बोले तुम ब्रह्म हो तो ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है वो तो व्यापकता के अर्थ में होता है, माने शरीर से बाहर निकल जाते हो आप। ब्रह्म शब्द का जब उच्चारण होता है तब तो आप शरीर से बाहर निकल जाते हो, और आत्मा शब्द का जब प्रयोग होता है तो आप शरीर के भीतर घुस जाते हो। अब ये शब्दों की महिमा है। तो श्रुति ये बताना चाहती है कि जो बाहर है सोई भीतर है, और जो भीतर है सोई बाहर है, दो चीजें नहीं है। दूरी है तो उसको आप उस बोल सकते हो, वह बोल सकते हो, निकटता है तो उसको आप यह बोल सकते हो, मैं बोल सकते हो। तो श्री सुरेश्वराचार्य जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मविद आपनोति परम, में जो परम है उस ब्रह्म से मान लो या तो सृष्टि, अथवा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जिस ब्रह्म का ये लक्षण किया गया है उस ब्रह्म से मान लो, दोनों एक ही बात है। तस्माद वा ए तस्माद, दोनों की एकता कहां है कि आत्मना, आत्मा में दोनों की एकता है। अब यहां ये विचार करने की बात है कि आत्मा माने शरीर में तो हम घुस गए, लेकिन कहां तक घुसे, इस ऊपर की खाल तक घुसे, किस के भीतर प्राण तक घुसे, किस के भीतर इंद्रियों तक घुसे, कि मन तक घुसे, कि बुद्धि तक घुसे, नारायण के सुख स्वरूप तक घुसे, कि उसके अभिमानी के रूप में घुसे, कि उन सब के साक्षी के रूप में घुसे, भीतर ही तो घुस रहे हैं, सब भीतर ही है, कहां तक घुसे। तो बोले इसकी जो सीमा है उसी को आत्मा बोलते हैं, जिसके और भीतर ना जा सको उसको तो बोलते हैं आत्मा, और जिसके भीतर और भीतर और भीतर हो तो उसको वो अनात्मा ही है आत्मा की दृष्टि से। तो वो जो सर्वांतर है, सबसे भीतर है, वो आत्मा वही है जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है। अब हम तो सिर्फ रोजाना अभ्यास इसका है कि ये शरीर जो है मैं हूं, तो जो सबसे बाह्य चीज है उसको जब हम अपना स्वरूप मानते हैं तो भीतर वाले को तो मानने में अभी बहुत टाइम लगेगा ना। तो तस्माद वा ए तस्माद आत्मना, उस आत्मा से जो सबसे भीतर है और ब्रह्म का आत्मरूप है, जिसको हम मैं बोलते हैं, उसी को असल में मैं बोलते हैं। और ये जो संसार में हम जिसको मैं बोलते हैं, वो तो शरीर का एक नाम रख लिया है, मैं प्रोनाउन है मैं। हर एक आदमी अपने को मैं बोलता है, लेकिन अर्थ कोई अपने को स्त्री समझता है, तो मैं का अर्थ नाउन जो है उसका वो क्या है, वो तो स्त्री है या मर्द है, पुरुष है या पशु है या पक्षी है। मैं तो सब बोलते हैं अपने को, लेकिन मैं का अर्थ सबका अलग-अलग अलग-अलग है, क्योंकि शरीर को ही हम मैं मानते हैं। अच्छा, ये शरीर जो है ये यह है कि मैं है? तो मैं का जो विषय होगा वो यह होगा, पास की जो चीज है, और मैं का जो विषय हो और दूर की चीज हो उसको वह बोलेंगे। तो ये शरीर वह है कि यह है? यह है, लेकिन मैं से तो अलग है ना, मैं के बिना इसका ज्ञान नहीं होता है नारायण। तो इस यह का जो मैं है, उस मैं के जो भीतर मैं है, उस भीतर वाले भीतर के मैं के जो भीतर मैं है, माने जो सबसे भीतरी मैं है, उसी को आत्मा बोलते हैं। इसको संस्कृत में प्रत्येक आत्मा बोलते हैं। प्रत्येक माने सबसे भीतर, प्रत्येक माने भीतर।